તારીખ 1/6/1996ના દિવસે માઉન્ટ આબુમાં થયેલ તત્વ ચર્ચા.
પરિભ્રમણ કી ચિંતા હોને કે પહેલે કિસી જીવ કો પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય બનતા હૈ નહીં બનતા હૈ. પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય તો વેદનાપૂર્વક આતા હૈ, વો યથાર્થ આતા હૈ, વો ઇસકા ક્રમ હૈ, સીધા નહીં હોતા હૈ. પહેલે કભી જિસ વેદના મેં આ ગયા હો, થોડા બહોત હો, વો બાત અલગ અલગ યોગ્યતા કી હોતી હૈ, સહી. લેકિન યથાર્થ મેં તો વહી પદ્ધતિ હૈ, તો ઉસસે હી આતા હૈ. ક્યોંકિ મુજે પરિપૂર્ણ શુદ્ધ હોના હૈ, ઉસમે બહોત સી બાત હૈ કે મેં એક આત્મા હું, મેં શરીરધારી મનુષ્ય નહીં હું. ક્યો મનુષ્ય હુઆ, દૂસરે જીવાત્મા ક્યો મનુષ્ય નહીં હૈ, ક્યો ઇન લોગો કી એસી અવસ્થા હુઈ, ઓર મેરી ભી એસી હોયગી તો ક્યા મેં કરૂંગા, મેરી બસ કી બાત તો હૈ નહીં. મૃત્યુ કે બાદ જૈસા ભી કર્મ બંધેગા વૈસી અવસ્થા હો જાયેગી વગેરે, તો વો સબ ચિંતા ચાલુ હો જાતી હૈ, ઉસમે સે વેદના આ જાતી હૈ, ફિર હી લક્ષ્ય બનતા હૈ યથાર્થ રૂપ. મેં જ્ઞાન માત્ર હું.
અપવાદ રૂપ મેં ભી એસા નહીં બનતા, અપવાદ રૂપ મેં ભી પૂર્ણતા કા લક્ષ્ય પહેલે હો જાવે ઓર પરિપૂર્ણ કી ચિંતના બાદ મેં હૈ,
इस प्रश्न से क्या फायदा, प्रश्न करने वाले को क्या फायदा?
ऐसा था कि ऐसा होता है, ऐसा चर्चा में आया था.
कुछ भी हो, बात तो स्वलक्ष्य विचारधारा में लेनी है या जानकारी बढ़ानी है, क्या करना है अपने को. हाँ, अपने को तो यथार्थ जो है उसे कोई पकड़े.
કોઈ જીવ અગર પહેલે સત્પુરુષ કે પરિચય મેં આંખ ના હો, પહેલે પરિભ્રમણ કી ચિંતના મેં આ ઓર સત્પુરુષ કી પહેચાન હો ગઈ હો, તો ભક્તિ ભાવ મેં આ કરકે ક્યા ઉસકો લક્ષ્ય બન કરકે નહીં ચલ સકતે?
નહીં, ઉસમે ક્યા હોતા હૈ, પહેચાન તો બાદ મેં હોતી હૈ, ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષા હોને કે બાદ. પહેલે કુછ અસમાધાન સમાધાન મેં પરિવર્તિત હોને સે વિશ્વાસ આતા હૈ, વો ખરી પહેચાન નહીં હોતી હૈ. ખરી પહેચાન તો ઉત્કૃષ્ટ મોક્ષતા સે બાદ આતી હૈ, તો ઉસમે તો અમલીકરણ કા સ્ટેજ ભી આ જાતા હૈ, અંતરાત્મ વૃત્તિ ભી ઉઠ જાતી હૈ, તબ પહેચાન આતી હૈ. તો ઉસકે પહેલે કોઈ પરિચય મેં આતા હૈ, ઓર પરિચય સે વિશ્વાસ આતા હૈ, ભક્તિ આતી હૈ, અપને પરિણામ મેં જો ફરક હુઆ ઇસલિયે ઉપકાર બુદ્ધિ મેં આતા હૈ.
અસમાધાન અસમાધાન મેં પરિવર્તિત હોતે હૈ, તો ઉસકો વિશ્વાસ આ જાતા હૈ કે યે બાત સહી હૈ, अब मुझे करना है सो यही करना है, ऐसा करके फिर वो चिंतना में आ करके नहीं बढ़ सकता है.
नहीं, वो जो असमाधान समाधान में आया उसमें चिंतना बहुत आती है.
हाँ.
जो असमाधान समाधान में परिवर्तित हुआ ना, उसमें बहुत चिंतना होती है.
सारा कचरा तो तभी निकलता है,
कचरा तब निकल जाता है. चिंतना में कचरा निकलने का एक प्रोसेस होता है, तो उसी वक्त हुआ कि नहीं हुआ, वही बात है. किसी को वेदना कम होती है, किसी को ज्यादा होती है, ये बात बनता है. तो वो तो अलग अलग जीव की अलग अलग योग्यता है. हमको तो अपने लिए विचार करना चाहिए, सभी को, सभी मुमुक्षु को अपने लिए विचार करना चाहिए. किसी को क्या होता है, किसी को अपवाद होता है या नहीं होता है, ये जानकारी से अपने को तो कोई फायदा नहीं होगा. માનો કે કુછ હોતા હો યા નહીં હોતા, હમ કુછ દૂસરા પાક બાત પકડ લેંગે તો નુકસાન હોને કા ચાન્સ હૈ ઉસમે. હમ હમારી જિજ્ઞાસા ઓર પ્રશ્ન હમારે લિયે રખે, પર હમ હમારે કો હમ ઇન્વોલ્વ કરે, તબ તો હમારા વો સ્ટેજ આયેગા ને. હમ સિર્ફ જાનકારી કે લિયે યા દૂસરોં કે લિયે ઇસ વિષય કો વિચાર કરેંગે, તો કહી ને કહી હમ ગલતી ભી કર સકતે હૈ, ગલત ધારણા મેં ભી આ જાયેંગે કે શાયદ એસા ભી હો સકતા હો, તો હમારા એસા હો તો અવલંબન લે લેંગે કે क्या फायदा इसे?
तो परलक्षीपना में असंभव
हो जाएगा। परलक्षीपना तो है ही अभी,
इसीलिए असंभव।
अभी तो लक्ष्य बना नहीं, विद्या में आया नहीं, तो परलक्षीपना तो है ही, वो तो अनाधिका है। इसलिए शुरू से ही एक शिस्त का, डिसिप्लिन का एक नियम है कि जो भी हमें विचार करना है, समझना है, उसको लक्ष्य पद्धति से समझना है। उसमें मेरे को क्या, मेरी भूमिका को क्या, मेरी योग्यता में कितना लागू होता है, मेरी योग्यता में लागू होता है कि नहीं, नहीं लागू होता है तो मुझे छोड़ देना चाहिए इस बात तो बच सकेगा, पर ना वैसे ही टाइम निकल जाएगा। ये तो सब भेद प्रभेद की बात है कि किसी को क्या होता है, किसी को क्या होता है। जानकारी करने की बात होगी तो परलक्ष्य है, जानकारी बढ़ाते जाओगे तो परलक्ष्य और बढ़ जाएगा, क्या फायदा इससे? इसलिए हमने प्रश्न उठाया कि आप किसके लिए वो सोचते हैं।
ऐसा कहा कि किसी मनुष्य से पूछा तो उन्होंने ये बताया कि परिभ्रम के आने के बाद ही पूर्णता का रास्ता बनता है। तो चर्चा ये ऐसी चली थी कि पूर्णता के लक्ष्य परिभ्रम की वेदना में आए बिना भी पूर्णता का लक्ष्य बन जाता है, बाद में परिभ्रम की वेदना आती है। तो ये दो परस्पर
पर आवाज में नहीं आती, पहले चिंता चिंतना पहले हो जाती है।
समझ को ठीक करने के दृष्टिकोण
से समझ को ठीक कहाँ तक करोगे भेद प्रभेद? मैं तो ये कहता हूँ कि आप अपने लिए क्या सोचते हो, उसमें प्रश्न यहाँ से उठाओ।
हमको तो वो बात ठीक लगती थी कि परिवार में किस चिंता में आए बिना उनका का लक्ष्य नहीं बन देगा, ऐसा हमको।
अब तो फिर क्या है कि फिर उसको प्रैक्टिकल साइड में ले जाना चाहिए कि कोई दूसरी बात आती है सामने तो प्रैक्टिकल साइड में ले जाओ समझने के लिए। आप प्रश्न पूछोगे, चर्चा होगी, उत्तर मिलेगा, कोई गलत धारणा भी हो सकती है उसमें, क्या फायदा? अपने खुद को इन्वॉल्व करो, खुद को शामिल करो, पद्धति वो ले लो। वरना जानकारी बढ़ाने का जो हमारा आदत है उसमें परलक्ष्यपना तीव्र हो जाएगा। पर क्रम का लाइन तो चॉकआउट करके दिया है, फिर किसी को कुछ हो नहीं हो इससे अपने को क्या मतलब?
इससे भिन्न परिप्रेरणा आई है इसलिए प्रश्न
है। फिर भी अपने को क्या मतलब इसका? मैं तो फिर भी आपका ध्यान खींचता हूँ कि अपने को क्या मतलब है इससे? आप वो क्यों नहीं देखते हो मुझे क्या मतलब है? मैं तो प्रवेश करता हूँ कि नहीं करता हूँ? मैं वेदना में प्रवेश नहीं करता हूँ तो मुझे तो वो चाहिए कि नहीं चाहिए? कि इतना काल जानकारी में तो बढ़ाया, जानकारी करने में ही टाइम निकला नहीं, कहाँ तक जानकारी करते रहोगे? परिणमन का अवसर कब आएगा? जब एक लाइन बराबर चॉकआउट करके दिया है तो इस लाइन पर आगे बढ़ने का प्रयास करने के बजाय दूसरी माथा पचीसी में क्यों जाना? मैं ज्ञान मात्र हूँ ऐसा धारणा में रख करके जीव पुरुषार्थ करता है, परंतु उदय प्रसंग में निष्फल जाता है। प्रसंग बीत जाने के बाद जागृति आती है तो उसमें कहाँ और कैसा प्रकार की भूल रह गई है? कोई धारणा में लिया है उसमें मुख्य तौर से जो काम होता है वो तो अभिप्राय बदलने का होता है। कोई तप त्याग कर लेता है तो करो, उसकी मनाही नहीं है, ठीक है, पाप में जुड़ने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, सहज रूप से अपना कषाय मंद रहता है और तप त्याग होता है तो उसके लिए वो नहीं कहेंगे कि उसको छोड़ करके तुम पाप में लग जा, परंतु जिसकी शक्ति मर्यादित है उनको मुमुक्षु की भूमिका में क्या करना चाहिए कि अपने जितने विपरीत अभिप्राय है वो विपरीत अभिप्राय को मिटाना चाहिए। एक भी विपरीत अभिप्राय प्रयोजनभूत विषय में रहेगा तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं होगा, आत्मानुभव नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन ग्रंथि भेद है, हमारी पकड़ विपरीत अभिप्राय में हो जाती है तो वहां ग्रंथि होती है, गांठ पड़ती है परिणाम के, उसको हमें छोड़नी है। इसलिए वो चर्चा भावनगर के स्वाध्याय दौरान भी हुई थी कि बहुभाग मुमुक्षु को किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति पूर्वग्रह रहता है, जो इसका उदय होता है जिसके साथ, और उसमें क्या होता है कि उसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि वो तो ऐसा ही है, तो जब उदय होता है तब उसी को लेकर के उसका परिणमन चालू हो जाता है। जबकि हमको मध्यस्थ रहना जरूरी है, पर्याय पलटने वाली चीज है उसको हमें भूलना नहीं चाहिए। कोई भी जीव कभी भी गुनाह खाता है पलट जाता है, आज का पापी हो कल का महात्मा हो सकता है, तो बात को ध्यान में रख करके हमको हमारे विचार में खुलापन रखना चाहिए, मध्यस्थता रखना चाहिए। तो इस प्रकार का जो अभिप्राय का अनेक प्रकार का ऐसा दोष है, पूर्वग्रह से लेकर के अभिप्राय का अनेक प्रकार का अभिप्राय का जो दोष है, तो अभिप्राय बदलने की भूमिका को ही मुमुक्षु की भूमिका बोली जाती है। अब प्रश्न वो चला है कि मुमुक्षु की कौन कौन सी भूमिका में विपरीत अभिप्राय बदलता है या मंद पड़ता है, और वो जो अभिप्राय बदलता है और मंद पड़ता है वो अभिप्राय कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं जो विपरीत है तुम्हें, ऐसा एक प्रश्न उठाया है। फिर से दोहराता हूँ मैं इस प्रश्न को कि मुमुक्षु की कौन कौन सी भूमिका में किस किस प्रकार का अभिप्राय का बदलाव होता है। जो विपरीत अभिप्राय लेकर के हम अनादि से बैठे हैं, अब मुमुक्षुता में प्रवेश किया तो किस किस भूमिका में किस किस प्रकार के विपरीत अभिप्राय का बदलाव होता है, ऐसा एक प्रश्न उठाया है। इसका समाधान है कि मुमुक्षु को सबसे प्रथम परिभ्रमण की वेदना आती है, पर जब वो तड़पन में जुड़ना में आता है उस वेदना तीव्र होती है, उस वक्त वेदना तीव्र होती है, तब उसका अभिप्राय बदलने की शुरुआत होती है। प्रारंभ यहाँ से होता है कि मुझे ऐसा दुखदायी परिभ्रमण अब नहीं चाहिए, ये विचार नहीं आया है, वेदना से बात आई है, इसलिए परिभ्रमण से ये बात आई है, इसलिए अभिप्राय के साथ अभिप्राय के बदलाव के साथ ये संबंध रखता है। मात्र ऐसा विचार जो हो परिभ्रमण के दुख का सुख का, वो तो चार गति का दुख वगैरह आता ही है छह ढालों में वगैरह में, तो उससे अभिप्राय नहीं बदलता है। अंतर से वेदना आती है तो अभिप्राय बदल जाता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, किसी कीमत पे भी नहीं चाहिए, इतना बड़ा नुकसान के लिए मेरी तैयारी नहीं है, मुझे और सब कुछ मंजूर है लेकिन ऐसा भयंकर परिभ्रमण तो मुझे मंजूर नहीं है। ये बात सबसे पहले परिभ्रमण की वेदना में अभिप्राय का बदलाव वाली होती है। उसके बाद पूर्ण, पहले तो हमने समाधान में चार स्टेज लिया है। पहला स्टेज लिया है परिभ्रमण की वेदना वाला, वहाँ अभिप्राय बदलता है। फिर दूसरा स्टेज में पूर्णता के लक्ष्य में बदलता है। तीसरा स्टेज है अपना निज अवलोकन, उसमें अभिप्राय विपरीत अभिप्राय पकड़ने में आ जाता है। और चौथा स्टेज है स्वरूप का पहचान यानी भाव भाषण। तो चार स्टेज में अभिप्राय का बदलाव होता है या मंद पड़ने लगता है।
बीच में एक जगह और नहीं आएगा, बीच में जो सतपुरुष के पति का जो पहचान होकर के उसके पति जो अपूर्व भक्ति प्रेम होता है, तो वहाँ पे भी अभिप्राय में बदलाव।
भक्ति में दर्शन में मंद होता है, बहुत निर्मलता आती है, लेकिन अभिप्राय का बदलाव स्टेज से संबंध रखता है। निर्मलता आती है तो उसमें स्टेज जो आता है ना, उस स्टेज अनुसार अभिप्राय बदलता है। भक्ति में तो एक बहुमान की प्रक्रिया बहुत है और उसके कारण से दर्शन में मंद होता है।
आज्ञाकारिता में जीव आता है ना, अभिप्राय तो पलटता है उसका। आज्ञाकारिता में आता है तो अभिप्राय तो पलटता है।
आज्ञाकारिता में तो भक्ति के कारण से आया, भक्ति के कारण से आया ना, तो वहाँ तो एक ही बात हुई कि मुझे आज्ञाकारिता में रहना है, वो अभिप्राय हुआ, उतना अभिप्राय हुआ। आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है, उतना अभिप्राय हुआ। तो पहले ऐसा कोई अभिप्राय नहीं बना था कि मुझे सत्पुरुष की आज्ञा में नहीं रहना है, लेकिन वो ऐसा दोष होता रहता था अभिप्राय नहीं होने के बावजूद भी, उतनी बात है। बात उसमें लिया है, उतनी अपेक्षा लिया है मैंने कि बीच में जो कोई सत्पुरुष का प्रत्यक्ष योग रूप परम सत्संग योग प्राप्त होता है, तो ऐसे योग में प्रयोजनभूत मार्गदर्शन प्राप्त होने से भी, मार्गदर्शन प्रयोजनभूत विषय का मिलने से जो कितने विपरीत अभिप्राय मंद पड़ जाते हैं या नाश को भी प्राप्त होता है। तो उसमें क्या हुआ है कि उस प्रत्यक्ष योग में जिस प्रकार का अपना विपरीत अभिप्राय है उसकी चर्चा अगर उसको मिली, अपने या तो समस्या खड़ी की या तो उसको उपदेश में मिल गई और प्रयोजन की दृष्टि है, तो उसने अभिप्राय बदल दिया। लेकिन उसमें तो जैसा जैसा अपना विपरीत अभिप्राय हो और जैसा जैसा मार्गदर्शन मिले, ऐसी जनरल बात लेनी पड़ती है। खास करके सत्पुरुष मिलने पर मैंने स्वीकार किया हो तो पूर्वग्रह, कदाग्रह और मताग्रह मंद होवे ही होवे। और उसी कारण से लोक संज्ञा विषय और प्रतिबंध रूप अभिप्राय निरस्त होता है, क्योंकि सत्पुरुष के प्रति वो उतना झुकेगा कि समाज की दरकार करेगा, नहीं तो लोक संज्ञा इसकी चली जाएगी, और झुकाव उतना बढ़ेगा तो उसको समाज प्रतिबंध टूटा तो हो सकता है कुटुंब प्रतिबंध भी टूट जाएगा और उसको देह प्रतिबंध भी छूट जाएगा, ये फायदा होता है। तो उस प्रकार के अभिप्राय पलट जाता है। और कुल परंपरा और संप्रदाय बुद्धि का नाश हो जाता है और अनंतानुबंधी संबंधित जो प्रकृति है, क्रोध मान माया लोभ, उस विषय और कुतूल वृत्ति विषय अभिप्राय भी मंद हो जाता है। ये सत्पुरुष के योग से इतना बड़ा लाभ हो सकता है, उतना बात लिया है, उतना वो बात ले लिया है सत्पुरुष के विषय में। जबकि प्रश्न वो था कि किस भूमिका में किस प्रकार का अभिप्राय का बदलाव होता है, लेकिन क्या होता है कि सभी को सत्पुरुष मिलते हैं और कोई संस्कारी जीव भी होता है, तो उसका तो स्टेज वाइज अभिप्राय तो बदलेगा। तो सिद्धांतिक तौर से तो दो बात होगी, एक तो सत्पुरुष के मिलने से जो फायदा होता है तो इतना लंबा चौड़ा भी होता है, पर नहीं मिलता है तो भी कोई आगे बढ़ता है तो चारों स्टेज में अभिप्राय का बदलाव हो ही जाता है, वो बात भी बनती है, वो प्रकार भी एक होता है। अब चार स्टेज में होता है तो किस स्टेज में किस प्रकार का अभिप्राय बदलता है, कि प्रथम परिभ्रमण की वेदना के स्तर में अभिप्राय पूर्वक संसार बल टूटता है, संसार में आगे बढ़ने का जो अभिप्राय था कि मुझे ये होना, मुझे वो होना, मेरी इतनी संपत्ति होना, मेरी इतनी इज्जत होना, मेरे का वो होना, इतना परिवार होना, वो होना, इतनी सत्ता होना, ये सब संसार बल टूट जाता है, क्योंकि ऐसे परिणामों से परिभ्रमण बढ़ाया है, वो बात वेदना में अच्छी तरह अनुभव गोचर हुई है। यानी संसार प्रत्येक के भावों में अभिप्राय पलटने से ओट आ जाती है, यानी निरस्ता आ जाती है, उसी को प्राप्त वैराग्य की शुरुआत कहते हैं, उदासीनता के प्रथम क्रम वहाँ से चालू होता है। तो वो अभिप्राय संसार की उपासना वाला जो अभिप्राय है वो वहाँ मंद हो जाता है। उसके बाद जब पूर्णता का लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य होने से आत्मकल्याण का दृढ़ निर्धार होता है, दृढ़ मुमुक्षुता प्रकट होती है, जिससे आत्मकल्याण के विरुद्ध जितने भी अभिप्राय है वो बदल जाता है, परिणाम होता है लेकिन अभिप्राय बदल जाता है और चारों प्रतिबंध ढीले हो जाते हैं कि मुझे किसी कीमत पे भी आत्मकल्याण कर लेना है, उसमें मुझे कोई समाज भी रोक सकता नहीं, मेरे कुटुंब भी मुझे आड़े आ सकता नहीं, मेरा शरीर भी मुझे आड़े नहीं आ सकता। ऐसे तो बहुत शरीर मिले, मुझे आत्मकल्याण कर लेना है, तो उनको चारों प्रतिबंध है वो एकदम ढीले हो जाते हैं। इस स्तर में मात्र मोक्ष अभिलाष का अभिप्राय पक्का हो जाने से अल्प भी लौकिक सुख की प्राप्ति की वांछा का अभिप्राय नहीं है कि ऐसा मुझे सुख हो तो ठीक है, इस प्रकार का मुझे सुख हो तो ठीक है, इस प्रकार का मुझे सुख हो तो ठीक है, वो बात नहीं रहेगी अभिप्राय में, वो बात छूट जाएगी। अभिप्राय में तो ऐसा हो जाएगा कि मुझे इस जगत में से अब कुछ लेना ही नहीं है, मेरे काम की एक भी चीज नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, एक मेरी आत्मा ही चाहिए, ये अभिप्राय हो जाएगा। इसलिए संसार के उपासना वाला जो जो अभिप्राय था ये सब उक्त अभिप्राय में पलट जाता है। इस भूमिका में बहुभाग नीम के जो विपरीत अभिप्राय है उसमें पलटा आ जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए तो वो बात चली थी कि निर्वाण पद का ये शिलान्यास है, जो पूर्णता का लक्ष्य है वो तो मोक्ष पद का शिलान्यास है, मंगल शिलान्यास यहाँ से होता है। उसके बाद जब अपना दोष देखने की भूमिका आती है उसमें जो जो दोष अभिप्राय पूर्वक होता है, दोष तो अभिप्राय पूर्वक भी होता है और अभिप्राय विरुद्ध भी होता है, तो उसमें जो जो दोष अभिप्राय पूर्वक होता है वे अनुभव पूर्वक समझ में आता है कि ये मेरा दोष में मेरा अभिप्राय वो था। और उस संबंधित तो प्रयोग पूर्वक उस अभिप्राय में पलटा ले आता है, उसको अभिप्राय को चेंज करने के लिए वो प्रयोग करता है। जो व्यक्तिगत रूप से मुमुक्षु के भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, हर एक का एक सा नहीं होता है। उसके बाद भेद ज्ञान का प्रयोग शुरू होता है, उसमें आत्मस्वरूप का भाव भाषण होता है, उसमें सर्व जितने भी कुछ भी विपरीत अभिप्राय का अंश रहा हो या कोई भी एक अभिप्राय रहा हो उस सभी मिट करके जीव का स्वरूप सम्मुखता का पुरुषार्थ चालू हो जाता है। वह अभिप्राय का दोष फिर नहीं रहता है, अभिप्राय का दोष मिटने की आखिरी भूमिका है। उस भूमिका में प्रयोजन भूत में जितने भी विपर्यास है वो विपर्यास अगर रहता है तो पुरुषार्थ स्वरूप सन्मुख होता नहीं, इसलिए यहाँ पुरुषार्थ स्वरूप सन्मुख हुआ तो बताता है कि विपरीत अभिप्राय सब खत्म हो गया। ऐसे चार भूमिका लिया है उपादान के मुख्यता से, और एक बात लिया है सत्पुरुष की मुख्यता से, सत्पुरुष के पहचान और सत्पुरुष के प्रति जो परम प्रेमार्पण आता है और सर्वार्पण बुद्धि जब आती है तब सभी प्रकार के कदाग्रह मताग्रह पूर्वाग्रह सब प्रकार के जो आग्रह की ग्रंथि है वो ग्रंथि छूट जाती है और विपरीत अभिप्राय मंद भी होते हैं और जो जो समाधान असमाधान का प्रकार था वो भी परम सत्संग के योग से छूट जाता है। तो वहाँ भी बहुत से अभिप्राय पलटने का एक परम योग होता है सत्संग का। तो आज थोड़ी चर्चा चली थी राणा भाई से अभिप्राय के विषय में, तो मैंने बोला कि हमने एक पॉइंट नोट आउट किया है डायरी में, उसमें से विस्तार से लेंगे। अब कोई प्रश्न हो तो बताइए।
आपने बताया कि अभिप्राय अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग अभिप्राय, इसमें भी क्लियरिटी लिया है कि किस तरह का अभिप्राय पहले खत्म होता है फिर किस तरह का अभिप्राय
पूरा नहीं। परिभ्रमण की वेदना में संसार बल वाले जितना भी अभिप्राय है कि जो संसार के कार्यों में जोर से अभिप्राय पूर्वक चलता था वो सब गिले हो जाते हैं, वो वेदना काम करती है उसमें। और क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि हुई नहीं वहाँ, तो पूर्णता के लक्ष्य में एक आत्महित के सिवा मुझे इस विश्व में से कुछ नहीं चाहिए, वो अभिप्राय खड़ा हो जाता है, तो उसके विपरीत जितने भी अभिप्राय हैं वो टूट जाते हैं। वो बात यह अपने तो मुख्य प्रयोजन इन दो स्टेज से अभी तो है। भाववासन वाली जो बात है वो भी लागू नहीं पड़ती, और अवलोकन की बात भी निरंतर अवलोकन नहीं रहता है तो वो लागू नहीं पड़ेगी। अब तो वेदना में आए संसार बल टूट जाएगा, पूर्णता के लक्ष्य में आएंगे, एक आत्म कल्याण के सिवा कुछ नहीं चाहिए वही अभिप्राय हो जाएगा, सब विपरीत अभिप्राय खत्म। नीम का जो अभिप्राय नुकसान कारक है वो पूर्णता के लक्ष्य में पलट जाता है, नीम में जो नुकसान करने वाला है वो पूर्णता के लक्ष्य में बन। वास्तविक शुरुआत मुमुक्षुता के वहां से हुई है, इसलिए कि अभिप्राय में बदलाव आ गया। तो अभिप्राय का बदलने का कोई ख्याल ही नहीं हो और दूसरे दूसरे प्रकार का कोई साधन करते हैं, और अभिप्राय तो विपरीत रहा, क्या फायदा होगा? वो सब काम, सब स्ट्रक्चर, वो रेत के ढेर पर मकान बनाया कितने टाइम रहेगा, वो कहाँ से टिकेगा? जिसकी नींव नहीं है, ये तो सब नींव की बातें हैं। अभिप्राय बदलना वो तो नींव की बातें हैं, नींव की बात तो हो ही नहीं, और वैसे ही मकान बना। टाइम हुआ है।